आपने बाहर के ये जंगल देखे हैं?
कॉर्पोरेट तो जाते रहते थे हम,
कॉर्पोरेट गए हैं।
कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट के लोग बहुत मेहनती हैं, और पहाड़ का आदमी होते ही मेहनती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए पार्क और पहाड़ के आदमी फौज में बहुत हैं, वेरी लेबोरियस, जो उन्हें काम सौंपा जाता है। तो मैंने कॉर्पोरेट में देखा कि वो बहुत मेहनती हैं, तो हमारी ये थोड़ी कमी ये है। अब तनख्वाहें बहुत हो गई हैं, हमारे ज़माने में तनख्वाहें बहुत कम थी, अब तो तनख्वाहें ज़्यादा हो गई हैं,
आपने जब शुरुआत
काम कम हो गया है।
आपने जब शुरुआत की तो आपकी तनख्वाह कितनी थी?
मेरी जब मैंने स्टार्टिंग करी 210
200 रुपये, जब पक्की आपकी नौकरी भी थी?
हाँ, नहीं पक्की नहीं थी, डेली वेज पे थी।
डेली वेज में 210 थी महीने की।
हाँ, फिर 2 साल बाद 240 हुई, 80 में मैं परमानेंट हो गया।
तब कितनी हो गई आपकी?
और तब मुझे याद नहीं, ये शुरू की याद है। हाँ, तब पे स्केल के हिसाब से कुछ तो रहा होगा, तब भी ऐसी रही होगी 500-700 रुपये बस।
अच्छा, आप जब चलाते थे गाड़ी तो आपका मतलब आप सिर्फ टूरिस्ट के लिए आप घुमाते थे, या आपका ये भी था कि नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ज़रूरत है या पेट्रोलिंग के लिए जाना है?
मेरे पास उस समय 2 से 3 गाड़ियाँ हुआ करती थी, एक टूरिस्ट घुमाने के लिए, फिर एक आग बुझाने के लिए, एक गश्त करने के लिए, तो 2-3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। सुबह को टूरिस्ट घुमाए, दोपहर में आग बुझाने चला गया, शाम को फिर टूरिस्ट घुमाए, फिर रात के 12 बजे 11 बजे फिर आग बुझाने लग गई आग, चलो 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 चलो, तो बहुत बिजी रहता था।
दिन का आपका कितने घंटे आमतौर पर मतलब ड्यूटी रहती होगी आपकी 24 में से?
24 में से कम 16-17 घंटे 18 घंटे के आसपास मान लीजिए आप।
और आप विलीफ की जीपें चला करती थी उस जमाने में?
नहीं, वो मैंने बताया ना कि 79 में 78 79 में पहली जीप आई डीजल की, महिंद्रा की। हाँ, पहली जीप थी वो, तो वो चलाता था। उससे पहले पेट्रोल गाड़ियाँ थी, विलीस की
थी उससे पहले गाड़ियाँ। तो जब आप आए तो यहाँ जीपें थी उससे पहले भी मतलब?
और वो जो महिंद्रा की गाड़ी थी तो मैंने वो उस समय 1,00,000 किलोमीटर चलाई, कोई नट बोल्ट ना ढीला ना फीला ना कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो हमारे डायरेक्टर साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने महिंद्रा ने महिंद्रा को लिखा कि वो हमारे पास ने फला फला आपकी गाड़ी महिंद्रा की पहली गाड़ी आई और 1,00,000 किलोमीटर चल गई, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, एक बोल्ट भी उसका ढीला नहीं हुआ। उन्होंने कहा ड्राइवर का फ़ोटो भेजो, तो उन्होंने अपना ऐड कर लिया।
अच्छा।
मतलब कहा कि हम मैगजीन भेजेंगे वो जिसमें आपका वो छपा होगा, तो उन्होंने अपना तो ऐड कर लिया कि हमारी गाड़ी तो इस तरह की है और ऐसे जंगल में इस तरह चली है।
वो आई मैगजीन फिर आपके पास?
नहीं आई मैगजीन, नहीं भेजी उन्होंने।
और तो मैं कुछ ऐसा भी ध्यान नहीं आ रहा है सीम जी, तो अभी हम रुकते हैं, आप भी थक गए होंगे इतनी देर।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका,
मैं पक्का
पक्का कुछ नहीं।
अच्छा, तो हम सोच रहे हैं और आपके कोई आप हम तो ये तो सवालात पूछ रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिल करता है कि नहीं हमको ये बताने का दिल है, ये कहानी, ये एक्सपीरियंस, ये ख्यालात, कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड?
नहीं, अब तो कुछ ऐसी बात नहीं है अब, क्योंकि वो 2-3 किस्से थे जो हो गए। ये तो कई बार है कि हाथियों को हमने दौड़ाया है, हाथी ने चार्ज किया है, फिर हमने मेरे हिसाब से जंगल में आप डर गए तो मर गए, और आप डरे नहीं तो आप जिंदा हैं। आप मेरे सामने कई बार टाइगर 10 मीटर पे भी आ चुका है, 5 मीटर पर, लेकिन आप भागिए मत पीठ दिखा के, हिम्मत नहीं तो बैक गियर लगाइए, या कोई बहुत बैक गियर के बाद कोई बहुत मोटा पेड़ हो उसके आड़ में हो जाइए। हाथी से तो बचने का, और जिग जैग भागिए जंगल के अंदर तो हाथी तो टेढ़ा मेढ़ा भाग नहीं पाएगा। टाइगर्स को तो अगर आप डांट दें कस के और हाथ ऊपर करके आवाज करके पूरी ताकत से तो हट जाएगा हम, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो सोचता ही तो बहुत बड़ा जानवर है और एकदम चीखा एकदम। एक बार हम जा रहे थे आम चौराहा, यहाँ से 4 किलोमीटर पे वहाँ आम के पेड़ पहले खड़े थे से 6-7, तो उसका नाम आम चौराहा पड़ गया। वहीं से करीब 500 मीटर जाने के बाद रिवर और उधर टायर हैवन जूली साहब का, तो मैं जा रहा था, सितंबर का महीना रहा होगा, तो मैं कच्ची रोडों में काई जम जाती है, हरी हरी काई, तो बहुत स्लिप होती है। तो मैं उस आम चौराहे के पास पहुँचने ही वाला था, मुश्किल से 5-6 मीटर रह गया हूँगा, एकदम दिमाग में आया यार कहीं इधर से टाइगर ना आ रहा हो, टाइगर हैवन की तरफ से। और आप यकीन मानिए, जैसे ही मैं चौराहे पहुँचा वो टाइगर आ रहा, आ ही गया था उधर से। अब एकदम अचानक हुआ सामना दोनों का, आज करा, और वो भी समझा पता नहीं क्या, भागा। तो वो जो काई होती है तो 3-4 बार स्लिप हुआ, गिरा, फिर भागा, फिर उड़ के भागा, फिर भागा, फिर जंगल के अंदर गया। तो हो जाता है ऐसे। एक बार मैं ऐसे ही बरसात के दिन थे, विली साहब के साथ हमारे यहाँ एक कल्लू भाई महावत थे, उनकी जवान बेटी ख़त्म हो गई थी, तो उसमें मैं सफ़ेद कपड़ों में था, विली साहब आ गए, तो वो भी बरसात के दिन थे,
मतलब बीमारी से हुई
है, हाँ बीमारी से। तो वो मैं उनके साथ टहलता हुआ बातें करता हुआ 4 किलोमीटर चला गया वहीं आम चौराहे तक। और तो उन्होंने कहा कि नसीम, मतलब और जानवरों के बारे में कुछ नहीं, वो ओनली टाइगर, वो नसीम वो एक टेढ़े पैर वाला टाइगर था, उसका पैर ऐसा पड़ता था, वो बहुत दिनों से उसका फुटप्रिंट नहीं मिल रहा है। तुम ऐसा करो, जो ये राइट में पगडंडी गई जंगल के अंदर, ये पक्के रोड पर निकलती है, मैंने कहा हाँ निकलती है, करीब 1 किलोमीटर। तो उन्होंने अपना डंडा दे दिया, एक वो रखते थे बड़ा, कह लो ये ले लो और चले जाओ देखते हुए, शायद कहीं मिल जाए इंटीरियर में वो टेढ़े पैर वाली की लाती, लाती कहते थे वो फूड पैंट को। मैं चला गया, जब सड़क मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर रह गई थी, तो मुझे बड़ा शोर रोने की आवाज़ और शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। मैं भाग के जल्दी रोड पर पहुंचा, तो 3 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं, उनके पीछे टाइगर चला रहा है। अरे मैंने देखा, उन्होंने कहा बाबूजी टाइगर पीछे, मैंने कहा हाँ देख लिया, मैंने सोचा भाग लो भैया तुम भी। एकदम दिमाग में आया कि अगर मैं भाग गया तो इनके बैल को या इनको टाइगर उतार ले जाएगा ज़रूर। तो वही इतना लंबा 3 फीट का डंडा घुमाता हुआ आज करता हुआ गया, तीसरी गाड़ी जो उसके पीछे वो चल जाता हूँ, बाबू टाइगर है, मैंने है टाइगर ही, तो और बढ़िया टाइगर की तरह, तो टाइगर बस इतनी दूर रह गया, ये 5-4 मीटर ये तकिए रखे हैं हैं, और उसने काउंटर अटैक देखा ना, आज करते हुए वो उनने दुम दबाई और एक तरफ। हाँ अब तो उन गाड़ी वालों ने उनका बैल भी एक बैठ गया, तो हमने कहा जल्दी उठाओ उसको, और फड़ दिया, वो तो चला गया लेकिन फड़ दी, मैंने शोर करते रहो हा हो करते रहे। तो 10 मिनट में बैल उठा, तो एक उधर से बस आई, तो बस को हाथ दिया, वो समझा कोई चोट डकैती है क्या, वो और भाग लिया तेज़ी से। खैर वो उन्होंने क्या कि अब तो साहब हम आपको जाने नहीं देंगे, हमने कहा हम जा रहे हैं, अब तुम धीरे धीरे आओ बैलगाड़ी से हैं। कहा नहीं साहब, अब तो हम बैलगाड़ी पर आपको बिठा लेंगे। उन्होंने भैया बैलगाड़ी पर ऊपर बिठा लिया है, और हम लोग हाश होश करते हुए चले आए। तो कम ये है काउंटर अटैक, हाथी के ऊपर अगर आप व्हीकल्स पे तब तो काउंटर अटैक कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये नहीं कि आप पैदल है और उनको अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर,
तो
हाथ उठाने से भी काम नहीं चलेगा, वो तो उससे बड़ा वो तो आप जो है जिग जग करते हुए ये पेड़ों से निकलती हुई भागी।
बहुत बढ़िया। और नसीम साहब, आपने कभी कोई कुछ अपना यादगारी या ऐसा कुछ लिखा है आपने आज तक?
मेरी लेखनी नहीं है, बहुत कमज़ोर है। मैंने बताया कि मैं खाली इंटरव्यू भी प्राइवेट करा, तो उस तरह के कुछ लिख नहीं सका मैं।
और आपको ये बताइए, आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड क्या क्या मिले?
मुझे 99 में शीला दीक्षित जी से अवार्ड मिला, और चीफ मिनिस्टर दिल्ली थी, उससे पहले 93-94 में मुझे अवार्ड मिला है कमलनाथ जी से, वो हमारे केंद्र में एनवायरनमेंट पर्यावरण मंत्री थे, तो उनसे अवार्ड मिला है।
कहाँ पे?
दिल्ली में ही।
वो किस लिए दिया गया था?
वो वही से क्या कहते टाइगर कंजर्वेशन में मिला मुझे।
अच्छा।
हाँ, 83-84 में एक सिंपोजियम था, 10 साल हुए थे और 20 साल हुए थे उसको, वो प्रोजेक्ट टाइगर के 20 साल हुए थे, तो एक सिंपोजियम था, विली साहब उसमें इनवाइट थे। अच्छा, मेरी ससुराल शाहजहाँपुर में है, तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नसीम हम दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने कहा साहब हमें भी लेते चलिए, हम शाहजहाँपुर उतर जाएंगे, हमने 3 दिन की छुट्टी ले ली है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। अच्छा, वो वहाँ से फिर वो दिल्ली चले गए। अब लौट के आए वो, तो उन्होंने तो बहुत मुझे डांटा भैया, बस पिटने से ही मैं बचा उनसे। कहने लगे इडियट, तुम क्यों नहीं गए? तो हमने कहा साहब हमें कोई दिल्ली को ये तो है नहीं, पलिया हम चले जा रहे हैं तो कैसे जाते? कहने नहीं, वहाँ तुम्हारा नाम पुकारा गया, तो मैंने कोई और किसी का पुकारा गया होगा, आप बस थोड़ा भ्रम में, अब वो मान ले बोले और कोई नसीम है क्या धुआ नेशनल पार्क में, वहाँ इतने बड़े सिंपोजियम में और इतने उसमें और इस स्टेज उसमें विदेशी लोग भी थे कई देशों के, और तुम्हारा नाम पुकारा गया, तुम नहीं थे। अब मैं बहुत अफसोस में, लेकिन ये है कि वो मेडल मेरा रख लिया गया, सर्टिफिकेट मेडल। फिर हमारे 1 साल के बाद वो डिप्टी डायरेक्टर गए, तो वो ले गया।
तो आपको पता नहीं था कि आपको ये मिलना है अवार्ड?
एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें, हम फॉरेस्ट के अफसर हो या कोई भी हो, वो फॉरेस्ट अफसर तो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होते थे, बहुत हाई लेवल वाले खुश रहते थे। अब यहाँ कोई भी VIP आ रहा है या कोई टूरिस्ट आ रहा है, मंत्री आ रहा है, वो नसीम साहब कहाँ है? रेंज अफसर का तो सोचता यार हम इतने सुपीरियर रेंज अफसर हैं, ये हमें कोई नहीं पूछता है, वाइल्ड लाइफ वार्डन सोचता है हमें नहीं पूछता कोई, नसीम के ईर्ष्या, तो वो लेटर तो ज़रूर आया होगा, ऐसी बात तो नहीं है, ऑफिस में आया होगा,
आपको पता नहीं है?
हाँ, दबा दिया। ये है,
तो वो पहला अवार्ड था आपका?
वो मेरा पहला अवार्ड। फिर शीला दीक्षित जी से मुझे अवार्ड मिला 99 में, WWF वालों से, वही ब्रेवरी अवार्ड था वो पहला जो था, वो टायर प्रोडक्शन के लिए था। और फिर तीसरा मुझे जो अवार्ड मिला वो रिटायरमेंट के बाद टूरिज्म के लिए मिला, उस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो योगी साहब ने दिया बुला के लखनऊ में।
कब, किस साल में?
कोरोना खत्म ही हो गया था, मैं मेरे ख्याल से 21 में मिला, शायद 21 में। अच्छा। वो तो फोटो है, आप अब देख लेना और कर लेना।
अच्छा। और तो क्या, आरएल सिंह साहब से आखिरी दफा आप कब मिले थे?
अब मैं यहाँ इतना बिजी रहता था, जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए फिर रिटायर हो गए, तो मैं उनके बेटे से मिलता रहता था, क्योंकि वो टूर से, हाँ, लेकिन उनसे नहीं मिल पाया ज़्यादा। एक बार वो यहाँ आए थे तो मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि नसीम तुम एक बोर्ड लगा लो अपने घर के सामने कि किसी को अगर दुदुआ की पुरानी बातें अगर पूछना है, यादगार रहने वाली बातें पूछना है, तो वो मुझसे संपर्क करे और आके पूछे। कहने लगे तो उसमें तुम्हें दोहरा फायदा हो जाएगा, लोगों को जानकारी आएंगी, तो आपको 2 पैसे मिलने लगेंगे। ये उन्होंने एक बार यहाँ आए थे तो कहा था। और कब आए थे? जब बिली साहब ख़त्म हुए थे।
अच्छा, तब आए थे,
तभी उसमें ही आए थे
वो, उनके मतलब उसमें।
हाँ,
क्रियाक्रम के लिए। अच्छा, मतलब ये आपस में उन लोगों की वो तनातनी चलती थी, लेकिन जब एक गुजरा तो दूसरा आया
आया,
उनको।
लेकिन वो हाँ 2010 में ही वो हमसे मिले, तो
अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है।
पिछले साल 1 साल हुआ है, तो उन्होंने ये राय दी। मैंने कहा अच्छा था। मैं असल में उनके समय में वो ट्राइब्स को, ट्राइब्स को बहुत बढ़ावा देते थे, जो ट्राइब्स लोग हैं ना थारू, और मैं उनके बहुत खिलाफ होता था। मैं कहता साहब आप इनसे, इनके फेवर में हैं, और यही सबसे ज़्यादा वाइल्ड, जो भी ट्राइब्स हैं वही वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा। ये मेरे दिमाग में था, चाहे हमारे हों, चाहे आसाम के हों, चाहे मध्य प्रदेश के, जो ट्राइब्स हैं उन्हीं के आसपास जंगल भी है, वो वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेरे एक दिमाग में बैठी थी बात। वो कहते नहीं यार इनको वो बढ़ावा देना है, ये करना है, शायद ये समझ जाए, उनकी वो धारणा थी।
फिर आपको क्या लगता है उनकी धारणा सफल हुई कुछ हद तक? नहीं,
मैं तो नहीं समझता हूँ कि कुछ सफल हुई है, बल्कि वो लोग और हावी हो गए हम लोगों पे। उनको जो रियायत हम लोगों ने दी पहले, वो अब हम लोगों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हावी हो गए। लकड़ी लेने वास्ते घुस जाते हैं, 100-200 लोग घुस जाते हैं, हम कम हैं, वो ज़रा देर में स्ट्राइक कर देते हैं, केंद्र सरकार उनका फेवर लेती है क्योंकि वो ट्राइब्स हैं, रेवेन्यू वाले उसके उनका फेवर लेते हैं, तो इस वजह से है।
तो थारू जो ट्राइब के लोग हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी नौकरी वगैरह इस तरह दी गई नहीं?
नहीं बहुत दी गई, जैसे हर डिपार्टमेंट दे रहे हैं उन्हें नौकरी, ट्राइब्स की वजह से उनका फिक्स है जो है बहुत है।
तो उससे कुछ आपको लगता है बदलाव आया कि जो कुछ नौकरी जब करने लगे तो कुछ
मेरे
जगहों
समझ में तो कोई बदलाव नहीं आया।
पर? अच्छा, लेकिन ये लोग आप कह रहे हैं कि ट्राइब जो हैं वो लकड़ी और ये सारी चीज़ों के लिए घुसते जंगल में, शिकार भी होता है? शिकार
जब लकड़ी लेने घुसते हैं तो कभी कभी शिकार भी अपने कर लेते होंगे, और क्या है, क्योंकि अब वो हावी हो गए हैं। कुछ ट्राइब्स के लिए ऐसे कानून गवर्नमेंट ने बना दिए हैं कि अब वो अपना हक समझते हैं। कई बार एक किस्म से इनकाउंटर हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उनसे
जैसे
जंगल में घुस गए हैं, जबकि एक एक दो को पकड़ के लाए तो वो 200-400 आदमी इकट्ठे हो गए नारे लगाते हुए और ये वो करते हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड को पकड़ दिया, उसे मारा, ये करा, ये इस तरह का हो जाता है। अब उनके कम से कम 40 से 50 गांव हैं, और यूनिटी है उनमें, और उनके का फेवर में कानून है। हम बताएं एक बार, एक इंटीरियर में सुरमा गांव है, सुरमा है हमारे पार्क के अंदर, उसको हटाने के लिए मुकदमा मुकदमा ये सब हुआ, वो मुकदमा हारे भी गए, लेकिन वही नेतागिरी वोट वाला मामला है, नेतागिरी हो गई तो समझो बेकार। डिपार्टमेंट तो नेतागिरी नहीं कर सकता, विधायक जी की नेतागिरी हो गई, रेवेन्यू बोर्ड ने वहाँ स्कूल पक्का बनवा दिया, रात में मटेरियल डाल दिया, रात को हम लोग उठा लाए, फिर दोबारा फिर डाल दिया मटेरियल, तो कैसे चलेगा? रेवेन्यू हमारे खिलाफ है तो फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा? पुलिस देगी रेवेन्यू वालों का साथ? तो ये है, उनके हुकूक जो हैं कुछ बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने ट्राइब्स के।
और कोई आपको, नसीम सर, आप किसी को कोई और किसी चीज़ पर बात करना चाहते हैं? हमारे तो लगभग सवाल पूरे हो गए।
और क्या बता सकते हैं, अब ये ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जितने, अगर जितने IFS ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको एक शख्स को ऐसे चुपचाप बैठ के देख वॉच करना चाहिए कि कि ये वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या प्लांटेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हैं? तो आपको लवर आईएफएस मिल जाएंगे, और जो लवर आईएफएस हैं जब पोस्टिंग हो तो नेशनल पार्क या सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लवर हैं उसके। होता ये है जो प्लांटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं वो भेज दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ वाले जो है वो भेज दिए जाते हैं वहाँ टेरिटोरियल में।
ठीक है नथीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका इतनी देर हमारा।
नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी तो अच्छी बात है।
बिल्कुल बेशक, ठीक है, शुक्रिया नथीम सर, हम इसको बंद कर रहे हैं।